نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وجاء من اقصى المدينه اور آیا شہر کے دور دراز حصے سے کون آیا رجل ایک شخص اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے آنے کو بھی ڈسکرائب کیا قرآن میں کس طرح سے آیا یسعا دوڑتا ہوا آیا یعنی جب اس کو معلوم ہوا کہ رسولوں کے خلاف اس طرح میری قوم پلان کر رہی ہے تو اس نے سارے کام چھوڑے اور دوڑتا ہوا آیا یہ کون شخص تھا اس کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ یہ شہر کے دور دراز حصے میں رہا کرتا تھا اس تک ڈائریکٹلی تو نہیں پیغمبر آئے مگر انڈائریکٹلی اس تک پیغام پہنچ چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ دور دراز علاقوں تک بھی رسولوں کی دعوت پہنچ چکی تھی اور جس نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے اب رسول ڈائریکٹلی جن کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ایمان لائے مگر جس کے نصیب میں ایمان ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے مان گیا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کبھی کہ کس کو انڈائریکٹلی میسج پہنچے اور وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ان سے بھی زیادہ پکا عمل کرنے والا بن جائے اس چیز پہ ایمان لانے والا بن جائے جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ میری آواز کدھر تک جا رہی ہے کس کے تھرو کہاں تک میرا میسج پہنچ رہا ہے اور کس کے دل پہ اثر کر رہا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ بات کو کہہ دینے میں حق کی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں کبھی انسان یہ نہ دیکھے یہ میرے سامنے والے تو مان ہی نہیں رہے کوئی پتہ نہیں ہے اللہ آپ کی بات کہاں تک پہنچا دے کس کے تھرو کدھر تک لے جائے اور کون مان جائے تو وہ جو دور بیٹھا ہوا تھا وہ مان گیا وہ ایمان لے آیا اور یہ وہ شخص ہیں جن کا نام روایات میں حبیب آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار تھے یا جزام کی ان کو بیماری تھی اور بہت سخی آدمی تھے جو کماتے تھے اس کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے دل کے انتہائی نرم تھے اور یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے کارپینٹر تھے نجار کہتے ہیں نا بڑھائی کو کہتے ہیں نجار تو نجار کا کام کیا کرتے تھے یہاں سے ہمیں تھوڑی سی یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو پیشے ہیں پروفیشنز جن کو عموماً ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ترخان ترخان ہے یہ وہ لوہار ہیں وہ موچی ہے وہ نائی ہے اور کتنا اس کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے یا آپ کو معلوم ہے یہ انگریزوں سے یا ہندوؤں سے ہم نے لیے یہ چیزیں کیونکہ ہندوؤں میں ذات پات کا بیسڈ آن پروفیشن ذاتیں پاتیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ کسی ذات کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور کسی کو اعلیٰ سمجھتے ہیں پھر انگریزوں نے حکومت کی یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں تو ایک وہ ذمہ داروں اور ایک ہاریوں کا جو ایک بیچ میں ڈفرینس رکھنے کے لیے تاکہ ہم کنٹرول کر سکیں تو کچھ لوگوں کو یا کچھ پروفیشنز کو بالکل نیچا اور بالکل چھوٹے درجے کا بنا دیا اور کچھ کو اونچے درجے کا وہ رکھا جانے لگا تو ورنہ مسلمانوں کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے ورنہ تو داؤد علیہ السلام کو کیا کہیں گے لوہار کہیں گے کیا یہ تو بہت ہی تو کیا مطلب کیا تھے لوہار تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے سارے پیغمبروں نے بکریاں چرائیں چرواہے کہیں گے یہ تو یہودیوں نے کیا تھا ایسے ہمارا چرواہا کہا تھا نعوذ باللہ کہ ایسی مطلب ہم باتیں ہماری سوچ اس طرح کی ہو چکی ہے جو کہ ہمارے مذہب میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے اسی طرح ادریس علیہ السلام درزی تھے پیغمبر ہیں اللہ کے اگر یہ پروفیشنز گھٹیا ہوتے نچلے درجے کے ہوتے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو इन प्रोफेशंस के साथ ना जोड़ता, क्योंकि कोई भी ऐसी मायूब बात, ऐब वाली बात अल्लाह ने अपने पैगंबरों में नहीं रखी। समझ आई बात? अब यहां पे ये सारी अहादीस में वो इसमें तफसीरों में आप देखेंगे किसी जगह लिखा हुआ है ये कॉल है कि ये धोबी थे, किसी जगह लिखा हुआ है ये कारपेंटर थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इनका मकाम कितना बुलंद किया कि जिसकी शान में आयतें कुरान में उतर आया, देखें आप। तो अल्लाह ताला के नजदीक ये आपके काम या किस हुनर किस प्रोफेशन से आप ताल्लुक रखते हैं वो कोई ऐब नहीं है। इस्लाम में ऐब में ऐब क्या है? कोई चोरी करता हो, कोई हराम खाता हो, कोई सूद खाता हो, कोई हराम चीजों का कारोबार करता हो, कोई डाके डालता हो, कोई मिलावट करता हो, ये ऐब है। ये ऐब वाले पेशे वो किसी पेशे में भी आ जाए ये ऐब है। लेकिन अगर ऐसे लोग बहुत अमीर कबीर हैं हमारे लिए तो कोई ऐब की बात नहीं होती, वो हम तो सोचते हैं ये तो बिल्कुल सही है। कोई जखीरा अंदोजी करता हो ये ऐब है। इन चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है जो ऐसे ही करें, जो मिलावट करता है, जो रिश्वत खाता हो, ये ऐब है। मगर हमारी सार आंखों पे वो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत दौलत होती है, बहुत माल होता है। जो झूठ बोलता है, धोखे देता है और धोखे से सियासत करता है और झूठ बोल बोल के वोट लेता है, वो ऐब है। लेकिन हमारे लिए बहुत बाइज्जत है। तो देखो आज हमारे मयार क्या बन गए। तो ये एक कारपेंटर थे। इससे पता चला अल्लाह ताला ना शक्लें देखता है, ना प्रोफेशंस देखता है, ना आपके माल देखता है। अल्लाह देखता है तो आपके अमल देखता है। ये इबादत किया करते थे गार में बैठ के। जब इनको पता चला कि ये जो ऊपर बात हुई ना इल्लम तंतहुला नरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, तो कि जब ये मेरी कौम इस तरह से सोच रही है, इस तरह से प्लानिंग कर रही है, इनका ये इरादा है, तो ये भागते हुए आए। قال يا قومي, बोले ऐ मेरी कौम। यहां से क्या पता चला कि ये इसी कौम के फर्द थे। अच्छा, आप देखेंगे कि ये रसूल जो है ना, उन्होंने किसी जगह पे भी नहीं कहा या कौमी, वरना आता है ना दूसरे रसूलों ने कहा या कौमी। इससे ये मालूम पड़ता है कि जो रसूल थे वो किसी बाहर की कौम से थे, किसी बाहर के इलाके से थे, कहीं और की बस्ती से थे, ये इनकी कौम नहीं थी। जैसे अल्लाह ताला ने और रसूलों को भी इस तरह भेजा है, मसलन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा, तो मूसा अलैहिस्सलाम किप्तियों में से नहीं थे, वो तो बनी इसराइल में से थे। लूत अलैहिस्सलाम को सद्दूम की बस्ती की तरफ भेजा, तो लूत अलैहिस्सलाम उनमें से नहीं थे। तो इस तरह कई दफा ऐसे हुआ है कि रसूल भेजे गए हैं, दूसरी बस्तियों में भी भेजे गए जो उनकी कौम में से नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये फर्द जो है ये इन्हीं की कौम में से है, इसलिए वो कह रहे हैं, ये रजुले मोमिन कह रहे हैं, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ऐ मेरी कौम रसूलों की पैरवी करो। भागे भागे आए और कहने लगे, लोगों रसूलों की बात मान लो। अच्छा, अब इन्होंने देखे, सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात है कि जो शुरुआत की अपनी बात की वो रसूलों की ताबेदारी से, कि इनका कहना मानो, इनके रास्ते पे चलो, यही फायदा है। जो तबलीग के अंदर जो पहला नुक्ता रखा, अब आप यहां से लेके आगे आयत नंबर 25 तक देखेंगे, इसी रजुले मोमिन की तकरीर है कि कैसे उन्होंने दावा किया अपनी कौम को। अल्लाह ताला ने उनके जो उनका दावा था, जो उनकी तबलीग थी, जो उनकी बात थी, उसको कुरान की आयत बना दिया। आते ही कहने लगे, रसूलों की बात मानो, क्योंकि रसूल ही अल्लाह का पैगंबर होता है। अगर रसूल को छोड़ के दीन को लेना चाहेंगे, नहीं अपना सकते। जब तक आप रसूल को फॉलो ना करें, हमें इससे ये भी पता चलता है कि देखें, मैं आपको बार बार ये बात कहते रहते, हो सकता है अल्लाह ना करें आप कोई इस तरह किसी के साथ बात हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि रसूल की अहादीस को हम नहीं मानते, رسول کو بات رسول کی بات کو نہیں مانتے تو مجھے بتائیں وہ رسول کی اتباع کیسے کریں گے، کیسے فالو کریں گے ان کو؟ یہاں پہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات ہی یہ ہے کہ رسول کو فالو کرو، کیونکہ رسول کے پاس ہی اللہ کا پیغام ہے، اسی کی زبان سے اللہ کی وحی ہم تک پہنچی ہے، اسی کی بات کو چھوڑ دو گے تو کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے. تو قرآن کس کے زبان سے نکلا ہے؟ وہ بھی تو اسی نبی کی زبان سے نکلا ہے جس کی زبان سے حدیث نکلی ہے. تو کہ وہ انہوں نے کیا کہا، اے میری قوم تم اتباع کرو ان رسولوں کی، کیونکہ دین بنتا ہی اتباع رسول سے. دیکھ لیں اتباع رسول کتنی ضروری ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور وہ ہدایت پہ بھی ہیں. یہ دیکھیں کسی کے بھی حق پہ ہونے کے لیے یہ دو چیزیں اس میں ہونا ضروری ہیں، اور زبردست طریقے سے حبیب نجار نے اس رجل مومن نے رسولوں کا تعارف کرایا کہ ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، ان کی سیرت کیسی ہوتی ہے. اور یہ چیز پہلی چیز دیکھیں، بار بار یہ قرآن میں بھی آتی ہے کہ رسول بھی کہتے ہیں ہم کوئی اجر نہیں چاہتے تم سے، ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے. تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ لا یسألکم اجرن، تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بے غرض لوگ ہیں، ہر طرح کے مفاد اور لالچ سے اوپر اٹھ کے یہ تمہیں خیر کی بات بتا رہے ہیں، کوئی تم سے ریوارڈ نہیں چاہتے، سیلف لیس کام کر رہے ہیں. تو سوچو کہ جس کو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، یقیناً وہ تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں نا، فائدے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو کیا ضرورت ہے کہ تمہارے لیے بار بار تمہیں آ کے بات بتائے، جبکہ اس کو تم سے کچھ ملنا بھی نہیں ہے، کچھ چاہیے بھی نہیں، نہ کوئی منصب چاہیے، نہ کوئی پاور چاہیے. اسی سے پتا چلتا ہے کہ رسول جو ہوتے تھے نا، جو وہ کام کیا کرتے تھے، ہمارے لیے بہت ہی اس کے اندر زبردست میسج بھی ہے. کسی سے کبھی بھی جب آپ دعوت کا کام کریں، کبھی کسی اجر کی توقع نہیں رکھیں، ایکسپیکٹ نہیں کریں، کچھ اسے چاہیں نہیں. ایون یہاں تک کہ یہ بھی نہ ڈیمانڈ کریں کہ اب میری عزت کرو، اب مجھے اوپر بٹھاؤ، اب میری تعریفیں کرو، اب تو یہ ہونا چاہیے، یعنی کسی طرح کی بھی ڈیمانڈ نہ کریں. اجر میں ہر چیز صرف مالی اجر نہیں ہے، کسی طرح کی بھی ڈیمانڈ نہ ہو. ہاں کوئی عزت دیتا ہے تو الحمدللہ، لیکن دعوت دینے والے کی طرف سے ڈیمانڈ نہ کیا جائے کہ مجھے ایک پیڈسٹل پہ ہی بٹھا دو. نہیں، وہ کوئی اجر نہیں مانگتے. انبیاء اس طرح کام کیا کرتے تھے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے تھے، کوئی تعریف نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جس کے لیے وہ کر رہے تھے وہ تو سب سے بڑا قدردان ہے، وہ دینے والا ہے. پھر ہم کیوں اجر چاہیں لوگوں سے؟ انسان کیا دے سکتے ہیں اجر میں؟ زیادہ سے زیادہ کیا دیں گے؟ کوئی مال دے دیں گے، کوئی تعریفیں دے دیں گے، کوئی شکریہ کر دے گا؟ تو جب ہمارا ایمان ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، وہ رزق دینے والا ہے، جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دے، تو پھر لوگوں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور ہم سورہ فاطر میں پڑھ چکے ہیں کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، جس کے لیے چاہے عزت کے خزانے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. پھر عزت لوگوں سے کیوں مانگتے؟ تعریفیں لوگوں سے کیوں مانگتے؟ شکریہ لوگوں سے کیوں چاہتے ہیں؟ کہ اللہ کی قدردانی کافی نہیں ہے؟ تو جو رسول ہمیشہ آئے، انہوں نے کبھی لوگوں سے کوئی فیس نہیں مانگی، کبھی لوگوں سے کوئی ہدیے نہیں مانگے کہ ہمیں لا لا کے دو، ہماری جھولیاں بھرو. اور دوسرا سب سے بڑی ان کی بات ہے کہ وہم محتدون، وہ با عمل رہے ہیں، جو انہوں نے بات کی اس پہ عمل کر کے دکھایا. کیونکہ جو بے عمل انسان ہے اس کی نصیحت بھی کام نہیں دیتی نا، اس کی نصیحت اثر نہیں کرے گی، نصیحت کرتا بھی رہے وہ اثر نہیں کرے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
رسول کس طرح سے تبلیغ کیا کرتے تھے، کس طرح سے وہ رسالت کا فرض ادا کیا کرتے تھے، نہ کبھی کسی سے اجر مانگتے تھے، اور ان چیزوں پہ خود عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، یہ ان کی سیرت تھی. اور یہاں سے یہ بھی پتہ ہمیں چل رہا ہے نا کہ دیکھیں یہ جو رسول آئے تھے، یہ جو تینوں رسول تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ بالکل بے بس ہو چکے تھے. اسی وجہ سے پھر یہ رجل مومن بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے انہوں نے پھر اپنی قوم کو یہ بتانا شروع کیا. تھوڑا سا اگر آپ امیجن کریں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ آئے جہاں پہ لوگ آرگیو کر رہے تھے رسولوں کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کوئی مجمع ہوں، وہ دور سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری کیا درد سر ہے کہ میں اب جاؤں، لوگ رسولوں کی بات تو سن نہیں رہے، میری کیا سنیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے، اور میں کون سا رسول ہوں، میرے پر تھوڑی ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں. جیسے ہم کہتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے نا، وہ بتائیں، ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں. تو جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، جب آپ نے حق کو پہچان لیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں. تو اس رجل مومن نے یہ نہیں سوچا، اور یہ بھی نہیں سوچا میں جا کے کیا کہوں گا، اور بھلا میری کون سنے گا، مجھے وہ کیا سمجھیں گے، اور چلو کچھ استخارہ ہی کر لیتا ہوں کہ پہلے میں استخارہ تو کر لوں، دیکھوں گا جاؤں بھی کہ نہ جاؤں. دیکھیے کہ کام کے لیے کوئی استخارے کی ضرورت نہیں، کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، چلو میں مشورہ ہی کر لیتا ہوں، نہیں، نیکی کا جو موقع سامنے آیا اس کو کر گزرے. جب خود کو بات سمجھ آ گئی، اس کو مان لیا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طرح کے بات سمجھ آ بھی گئی ہے، پھر بھی جس کے پاس بیٹھیں گے اسی سے پوچھنے شروع جائیں گے، اچھا اب آپ بتائیں یہ بات ٹھیک ہے، ان سے بھی ذرا کنفرمیشن لے لوں نا. جن کے پاس بیٹھے ہوں دل کی تسلی کے لیے، چاہے ان کو کچھ بھی نہ آتا ہو، ہر ایک کے پاس بیٹھ کے کنفرم کرا رہے ہیں. یہ تو دیکھ لو وہ کتنا علم رکھتا ہے جس سے پوچھ رہے ہو، لیکن اپروول چاہیے نا، انہوں نے تو نہیں کوئی اپروول لیا، بھاگے دوڑے، کوئی ٹائم نہیں ویسٹ کیا. ہاں اپنی اللہ توبہ کرتے رہتے، چلو میں تو ٹھیک ہوں نا، باقی اب یہ لوگ نہیں مانتے، رسولوں کی نہیں مان رہے، بڑا افسوس کی بات ہے، ماننی چاہیے ان کو، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، انہوں نے رسولوں کی نہیں مانی، ہماری کیا مانیں گے، خود ہی ازیوم کر لینا جیسے ہم کر لیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہاں ماننا ہے، ہماری کہاں کچھ چلے گی، تو اس لیے چھوڑو ہی. بلکہ کیا ہے، یہ مرد مومن وہ ہے حبیب نجار، جس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا کہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کریں. دیکھیں یہاں پہ نہ کوئی اجر ان کو ملنا ہے، کیا دیں گے لوگ ان کو، کوئی سیلری پہ کام کر رہے ہیں، نہ کوئی اپریسیشن ملنی ہے. سوچ لینا خود کہ ایک مجمع کھڑا ہوا، سب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مار دیں گے، رسولوں کی تو وہ قدر نہیں کر رہے. تو سوچے ایک بندہ، انسان سوچتا ہی ہے نا کہ میں چلا گیا تو یہ مجھے کیا سمجھیں گے، ان کو نہیں کچھ سمجھ رہے، تو نہ ہی یہ سوچا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی اچھا بھی سمجھے گا کہ سارے میرے ہی خلاف ہو جائیں گے، بلکہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھا، ایک فرض سمجھا. اور دیکھے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی اجرت کو مانگے ہوئے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، کیونکہ دیکھیں شیطان نا انسان کے کاموں میں جو خرابی ڈالتا ہے وہ اسی طرح سے ڈالتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے نبھاتے تعریفوں کی خواہش کرنے لگتا ہے، اپنی بڑائی کی خواہش کرنے لگتا ہے. اس طرح سے شیطان سارے عمل کو ضائع کروا دیتا ہے اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا رہتا ہے میں بڑے نیکی کے کام کر رہا ہوں، میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے وہ اس عورت کی طرح جو اپنے ہاتھ سے سوت کاٹتی ہے، پھر خود ہی اس کو ادھیڑتی جاتی ہے، خود ہی کاٹتی جا رہی ہے، خود ہی ادھیڑتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن اعمال نامے میں سے خود ہی ان کو مٹاتا جا رہا ہے ریاکاری کر کر کے. جیسے دیمک چاٹ لیتی ہے نا کسی چیز کو، تو نیک اعمال کو بھی یہ چیزیں چاٹ جاتی ہیں، ریاکاری، دکھاوا، بڑا بننے کی خواہش، جس کو حب جاہ کہتے ہیں، میں بڑا بن جاؤں، हर एक को हुब्बे माल नहीं होता, हुब्बे जाह बड़े बड़ों को डबो देती। जिनको हुब्बे माल नहीं होता, माल की मोहब्बत नहीं होती, उनको शैतान हुब्बे जाह से पकड़ता है। पोजीशन, पावर, मेरे हाथ में हो कोई चीज, मैं अथॉरिटी बन जाऊं, जिसने बड़े बड़ों को डबो दिया। तो मर्दे मोमिन ने तो कुछ भी नहीं चाहा, और पैगंबर भी कुछ नहीं चाहा करते थे, ना कोई पोजीशन, ना कोई पावर, ना कोई बादशाहत, कुछ नहीं डिमांड करते थे। और मर्दे मोमिन को तो मिलना भी क्या था, हबीब नज्जार को किसी ने क्या समझना था। यहां से पता चलता है कि उनके पास कोई बहुत माल, बहुत इकतदार, बहुत खानदानी, जिसको कहेंगे स्टेटस, और ये वो जो दुनिया जिसको बहुत बड़ी चीजें समझती है, कुछ भी नहीं था, बस ईमान था, जिसने आराम से बैठने नहीं दिया। ये बात जूं ही सुनी भागे। ये सोच सकते थे कि मैं कौन सा इतनी बड़ी चीज हूं कि मैं अगर जाके कहूंगा तो जैसे मेरी वो बात बड़े मान लेंगे। कुछ भी नहीं, फिर भी उठे और अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों को तबलीग कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि इस तरह अगला पॉइंट दिया, वा माली अला आबुदुल्लदी फतरानी, मुझे क्या है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। ये तो बहुत ही बेवकूफी होगी अगर मैं उसी की ना इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया। यानी आज जो इंसान है, हम जो इंसान के रूप में बैठे हुए हैं, इस वक्त जीते जागते बैठे हुए, किसने हमें पैदा किया? जिसने पैदा किया कि आज हम यहां पे बैठ सके हैं, आज हमारे अंदर लाइफ है, आज हम एक इंसान कहलाते हैं, क्या वो इस लायक नहीं है कि उसके आगे सजदा किया जाए, उसकी इबादत की जाए? तो कहते मैं अल्लाह की इबादत क्यों ना करूं। इबादत में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इबादत में बंदगी भी आती है, इबादत में इताअत भी आती है, ओबीडियंस, उसके हुक्मों पर चलना, मोहब्बत, उसकी रजा चाहना, उसी से दुआएं मांगना, उसी के सामने सजदे करना, ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं इबादत के, सब इबादत में आता है। मैं क्यों ना उसकी इबादत करूं? यानी कि क्या मतलब हुआ फिर कि मैं क्यों ना उसकी इताअत करूं, मैं क्यों ना उसकी बंदगी करूं, क्यों ना मैं उसको राजी करना चाहूं, मैं क्यों ना उसी से मांगू, मैं क्यों ना उसके सामने झुकूं जिसने मुझे पैदा किया। अब आपसे कोई पूछे कि आप अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं, तो आपके पास क्या जवाब होना चाहिए? उसने मुझे पैदा जो किया, सबसे पहली बात ये है ना, बेसिक बात। कई लोगों को समझ ही नहीं आती कि अगर उनसे पूछे कि तुम क्यों वर्शिप करते हो, अल्लाह को क्यों वर्शिप करते, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया। सिंपल एज दैट, सबसे पहली जो चीज है, बेसिक चीज है, उसके ऊपर आए, सोच में पड़ जाते हैं। हाँ वाकई, कभी कहते हैं आसमान उसने बनाया, उसने जमीन बनाई। आसमान जमीन को छोड़े, पहले अपने आप को तो देखें, आप कहां से आए? कहे उसने मुझे पैदा किया है, जिसने पैदा किया हो उससे बड़ा एहसान किसका हो सकता है। अब मां का भी दर्जा क्यों है कि उसने वो मुशक्कत उठाई पैदा करने में, तो वो तो सिर्फ एक सबब बनी। वो जो पैदा करने वाला है, सबसे बड़ा तो उसका एहसान है, फिर उसके आगे क्यों ना झुकूं। और सबसे बड़े तबलीग का नुकता आप यहां पे नोट करें, ये नहीं कहते कि तुम उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, क्यों तुम इनकी इबादत कर रहे हो, क्यों तुम गुमराह हुए हो। क्योंकि अगर लोगों को कह देना कि तुम ये ना करो, नो से अगर बात स्टार्ट करें, ये ना करो, वो करो, और तुम तो गुमराह हो गए हो, तुम तो गलत चीज पे चल रहे हो, तो जब आपने लोगों को कह दिया ना कि तुम गुमराह हो, तुम खताकार हो, तुम गलत हो, तो लोग उसी वक्त कहेंगे हमने तो मानना ही नहीं, लोग इसने हमें ऐसे कह दिया, लोग आपके ही पीछे पड़ जाएंगे। लोग फिर नहीं उसकी बात सुनते कि ये तो हमें ऐसे कह रहा है, उसके मुखालिफ हो जाते हैं। और कोई अपने मुखालिफ की, अपने जो किसी के अगेंस्ट होता है, उसकी बातों को कोई नहीं गौर से सुनता। तो उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हें क्या हो गया कि तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसने तुमको पैदा किया, ये कहा मुझे क्या हो गया, मैं क्यों ना करूं उसकी इबादत, मैं क्यों ना उसको मानूं, ये तो मेरी तरफ से बड़ी खता होगी, मेरी बड़ी एहसान फरामोशी होगी अगर मैं उसको छोड़ दूं। वह इलैही तुरजाउन, और उसी की तरफ, मैं नहीं कहा तुरजाउन, तुम लौटाए जाओगे, तुम, यहां पे तुम क्यों कहा। देखिए इन चीजों के ऊपर भी ये नुक्ते हैं गौर करने के लिए, इसलिए कि जब आप किसी को तबलीग करें और उसको उसकी आखरत याद कराएं, उसका अंजाम याद कराएं कि सब को जाना, तुम अल्लाह को मानो या ना मानो, तुम्हें भी उसी की तरफ जाना है। ये नहीं कि मैं अल्लाह को मानती हूं तो मैंने तो उसकी तरफ जाना है, बाकी तुम बरी जिम्मा, नहीं, तुम्हें भी उसी की तरफ जाना है, तुम लौटाए जाओगे उसकी तरफ। अब आप देख लें कि एक मजमे में ये बात बोलना, हालांकि आपको पता है कि किसी ने गले में हार नहीं डाल देना, हाँ, किसी ने तारीफ नहीं करनी, किसी ने सर पे नहीं उठा लेना, इतने लोगों में ये बात कह देना, जहां पे कोई शाबाश देने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई हौसला अफजाई करने वाला ना हो, हम तो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाते जब तक कि हमें कोई शाबाश ना दे। हम तो एक दिन कुछ काम करेंगे, अगले दिन सुस्त होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। फिर भी जमे रहना जहां पे हालात इतने आपके अगेंस्ट हो, लोगों ने शाबाश क्या देनी है, लोग तो जान के दुश्मन हुए पड़े हो, गुस्से में हो, फिर भी कोई अल्लाह की बात कर दे, कितना बुलंद ईमान है इनका, कि कह रहे हैं कि मैं क्यों ना उसकी इबादत करूं। तो उन्होंने रजुल मोमिन ने रब की तरफ बुलाया, और ये बात वो ही कर सकता है जो वो वाकई खुद भी रब को पहचानता हो। अब इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियों से एजुकेशन ली थी ये बताएं, कितनी यूनिवर्सिटियों में पढ़े थे, या इनके पास आके कोई इनको क्लासें दी गई, कोई रसूलों ने इनको तबलीग का तरीका बताया, कोई इनको बताया भाई आपने इस तरह बात करनी है, आपने इस तरह से करना है। असल बात ये होती है कि जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो ना, जब दिल में अल्लाह की पहचान हो, तो ये बातें खुद ब खुद जुबान पे आ जाती, फिर किसी के पढ़ाने बताने की जरूरत नहीं होती। किसी ने बड़ी प्यारी बात की, इसने कहा कि अगर किसी के घर में गम हो तो आप बाहर से, उसके घर के बाहर से गुजरते हैं, पता चलता है यहाँ ये गम वाला घर है। इसी तरह किसी घर में शादी हो, आप करीब से गुजरते हैं, पता चल जाता है शादी वाला घर है, खुशी वाला घर है। तो जिस दिल में अल्लाह हो, कैसे हो सकता है आप उसके पास बैठे और पता ही ना चले कि इस दिल में रब बसता है, इसमें रब की मोहब्बत है, इसमें ईमान है। तो इंसान का तो पता लग जाता है, फिर ईमान जब अंदर होता है ना तो बातें भी खुद ब खुद आ जाती हैं, फिर ये छुपता नहीं है, फिर ऐसे ऐसे नहीं है कि दिल में तो मेरे बहुत ईमान भरा हुआ है, ऊपर कुछ पता ही नहीं चलता। ईमान की तो खुशबू है, वो तो फैलती है खुशबू। तो कहते हैं कि मैं उसी की इबादत करता हूं जिसके पास तुम्हें भी जाना है। अब देख लें कि आज हम कुछ बात करें तो पहले ये देखेंगे लोग इस बात से खुश होते हैं कि नहीं, हालांकि ना उन्होंने हमें पैदा किया, ना ही हमें वापस उनकी तरफ जाना है, ना वो हमारी जिंदगी के मालिक, ना मौत के, ना नफे नुकसान के, लेकिन हम उनको अल्लाह से भी बढ़ के हक दे देते हैं। जिसने हमें जिंदगी दी और मर के भी जिसके पास जाना है, उसको कैसे नाराज करें। जब हम अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करते हैं, उसका हुक्म तोड़ते हैं, तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैंने वापस किसके जाना है, किसके पास वापस जाऊंगी। ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये टाइम गुजर जाएगा, ये मौका गुजर जाएगा, ये ओकेजन गुजर जाएगा, ये लोग भी अपने घरों को चले जाएंगे, और एक दिन तो मुझे वैसे ही मिट्टी में डाल के चले जाएंगे अपने घर और भुला भी देंगे मुझे, लेकिन मुझे तो रब के पास खड़े होना है ना, फिर क्यों ना मैं सबसे ज्यादा उसकी वफादार हूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसके पास मुझे वापस जाना है। तो कहते हैं तुम उसी ही तरफ लौटाए जाओगे, और तबलीग का बेहतरीन तरीका भी आपको पता चलता है कि स्टार्ट इससे नहीं किया। हम तो स्टार्ट किससे करते हैं, आप कब, आप हिजाब कब शुरू कर रही हैं, आप कब अबाया लेंगी, आप कब ये करेंगी, ये नेल पॉलिश नहीं लगानी, इससे स्टार्ट हमारी तबलीग होती है। अल्लाह की पहचान तो कराओ कि जिसने तुम्हें पैदा किया, देखो तुम पैदा होने में भी उसके मोहताज हो। कितना हमने पढ़ा था ना अल्लाह की के हम कितने मोहताज हैं, सूरह फातिर में, उसके क्रिएटर होने पे तो रोशनी डालो, फिर उसके बाद आखरत की बात करो। सबको वहीं जाना है। اتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کچھ الہ؟ اب دیکھیں سارے میں کا سیگا ہے، میں کیا ایسے رب کو چھوڑ کے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے پاس مجھے جانا ہے، میں اس کو چھوڑ کے میں ان کو رب بناؤں؟ یہ تو بہت ہی گمراہی کی بات ہوگی اگر میں ان کو رب بناتا ہوں جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی. رحمان چاہے، اگر وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، دیکھیں یہاں پہ رحمان کی بات ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر اس نے تکلیف دینے کا مجھے ارادہ کر لیا، چاہے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے، قصوروں کی پکڑ میں میرے مجھے کچھ نقصان دینے کا اس نے ارادہ کر لیا، کون مجھے بچائے گا؟ کون میری سفارش کرے گا؟ پھر مجھے ان کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ اتنے بے بس ہیں کہ مجھے بچا ہی نہیں سکتے، میں کیوں ان کی عبادت کروں پھر؟ کھلم کھلا شرک کی تردید. آپ دیکھیں کہ جس رب کوئی توحید کا بیان انہوں نے آیت نمبر یہ 22 میں رب کی توحید کا بیان کر دیا، آخرت کا بیان کر دیا، اور اس کے بعد شرک کی تردید کر دی، دو آیتوں میں کتنا پیارا سبق دے دیا. اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ سمپل بات، اس نے پیدا کی ہے، اس کے پاس ہی جانا ہے واپس، ان کی کیوں نہ مانیں، ان کی کیوں نہ عبادت کریں؟ یہ بھی تو کچھ ہے، ان کی عبادت کیوں کروں بھائی؟ یہ تو مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو. اور جس کو میں نے منہ دکھانا ہے، وہ کہتے ہیں نا میں کیا کروں، میں نے تو اس کو، ہمارے اس میں کہتے ہیں پنجابی میں کہ متھے لگنا ہے، اس کے متھے لگنا ہے، تو پھر میں کیوں اس کے ساتھ بگاڑوں؟ تو جس رب کے پاس واپس جانا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے، آپ اس سے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ موت کے بعد سب نے واپس نہیں جانا، خود سوچیں، کسی جگہ آپ نے موو کرنا ہو، اور جس جگہ آپ نے موو کرنا ہے، اگر وہاں پہ آپ کا بہت کوئی بیسٹ فرینڈ، کوئی بہت پیارا رہتا ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اور کوئی اور ہے اور اس نے کسی جگہ موو کرنا ہے، اور وہاں پہ اس نے آلریڈی اپنے لیے اپنی مخالفت تیار کر رکھی ہے، تو اس کو کیسا لگے گا؟ موو، دونوں موو کر رہے ہیں، فورسڈ موو ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، کیسا لگے گا؟ پہلا انسان جو ہوگا شاید کچھ اس کو گھبراہٹ ہو نئی جگہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوگی کہ وہاں پہ میرا اتنا پیارا ہے، اس سے تو میں ملنے کے لیے اتنے عرصے سے بے چین ہوں، اس سے ملاقات ہوگی تو وہ خوش ہوگا. دوسرا، اس کو سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کو پتا کہ وہاں پہ تو میرے دوست نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو موت بھی تو ایک موو ہے نا، یا دنیا سے ہم نے آخرت میں موو کر جانا. جس نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوگا، اس کے لیے تو بڑی آسانی ہے، وہ تو بڑا خوش ہوگا، ٹھیک ہے اسٹرینج جگہ ہے، نئی جگہ ہے، لیکن میرا دوست تو وہاں پہ ہے، اور دوست وہاں پہ ہر جگہ مجھے لے جائے گا، وہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا، مجھے کیا پریشانی، مجھے سیٹ بھی کرا دے گا وہاں پہ، میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ، اور میں نے تو اتنے عرصے سے اس سے ملی بھی نہیں، اب ملنے کا بھی موقع ہے، تو خوشی ہوگی نا. اور اگر پتہ ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں سوائے اجنبیت کے اور مخالفت کے، اور میں نے تو وہاں پہ دشمنی پالی بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جس کے جا کے سامنے جانا ہے، جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جب یہ فکر انسان کو لگ جائے نا، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس، جس نے پیدا بھی کیا، اس کا احسان ہے، اور اس کے بعد اسی کے پاس جانا ہے، تو اس سے دوستی کیوں نہ کرے گا؟ تو زبردست انداز ہے تبلیغ کا، کہیں نہیں یہ بات کی کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تم ویسے ہو جاؤ گے، تم جہنمی، تم نے رسولوں کے ساتھ ایسے کیا، اب دیکھنا تمہارا حال کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ ان کی میں کیوں عبادت کروں، یہ نہیں کہا تم کیوں عبادت کرتے ہو ان کی، کہتے ہیں میں کیوں ان کی عبادت کروں، ان کا بھلا کوئی زور چلے گا، یہ مجھے چھڑا سکیں گے کسی مصیبت سے؟ کتنی لاجیکل بات ہے نا، ساری بات ایک تو اپنے اوپر رکھ کے کر رہے ہیں، پھر بالکل لاجیکل اور سمپل، جو ہر ایک کو سمجھ آ جائے، जरा सी भी किसी के दिल में अगर कोई गुंजाइश है तो उसको असर करेगी। तो उन्होंने इतनी सिंपल अंदाज में ये इन बुतों की या जो भी अल्लाह के सिवा जिसको पूज रहे उसकी बेबसी की तरफ तवज्जो दिलाई। कितने बेबस हैं ये, अब मैं इन बेबसों के पास चला जाऊं? आप सोच लें कोई इंसान अपनी एप्लीकेशन लेके बजाय सदर के पास जाने के उस फकीर के पास चला जाए जो ऑलरेडी एक बेगर है, जो हर हर जगह जा जाके कुछ मांग रहा है, वो खुद बेगर है, उसके पास ही अपनी एप्लीकेशन ले जाए मेरा काम कर दे, वो आप कहेंगे पागल ही है ये। यही हाल है कि अगर अल्लाह को छोड़ के गैर उल्लाह के पास चला जाए कोई इंसान, गैर उल्लाह में कोई भी आ सकता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे फरिश्ता है, चाहे चाहे वो कोई बुत है, सब अल्लाह ही के मोहताज तो हैं, वो तो खुद फकीर है, आप अपनी एप्लीकेशन लेके फकीरों के पास जा रहे हो। तो कहते हैं अगर मुझे मेरा कोई भी नुकसान पहुंचता है, एक सर में दर्द ही है, और चीजों को तो छोड़े, एक सर में दर्द है तो वो भी कोई गैर अल्लाह ठीक नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने तकलीफ देनी है कोई नहीं बचा सकेगा, एक आसमानी बिजली फिर तो काफी है, एक हवा का झोंका ही काफी है, वो तो जरा सी जमीन को ही हिला दे, सैलाब का एक रेला भेज दे, समुद्रों में तुगयानी आ जाए, एक सुनामी काफी है, एक झटका जमीन का काफी है, इंसान की औकात उसको याद आ जाती है। तो फिर मैं क्यों उस रब को छोड़ू, उस रहमान को छोड़ू, ये बेबस माबूद मुझे क्या काम आएंगे। और कल के बुत तो हमें बेजान नजर आते थे, मगर आज क्या हो गया हमारी अक्लों को कि वो कब्र में जो पड़े हुए हैं उनसे हाजतें और मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं, कि वो जो जा चुके हैं, जो मर चुके हैं, वो जिंदा की हेल्प करें, उनकी बिगड़ी बनाए, उनकी मुश्किल आसान करें। उन जमाने के लोगों की तो अकल पलटी गई थी, आज के लोगों की अकल कौन सी काम कर रही है जो ये काम कर रहे हैं, कितनी दुनिया उनको पुकार रही है, वो तो बोलते भी नहीं है। अल्लाह ताला तो कहते हैं क्यामत तक ये नहीं जवाब दे सकते, फिर भी जाके उनसे मांगते हैं। कोई आपको नुकसान हो जाए वो बचा सकते हैं? वो तो सुन भी नहीं सकते। और वो रब अगर कुछ भी वापस लेना चाहे, कोई मेरी कुव्वत वापस लेना चाहे, कौन मेरी मदद करेगा, कौन बचाएगा? जो दुनिया से जा चुके वो तो अपने आप को भी ना मौत से बचा सके, वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं? इतनी सी सिंपल बात भी ना समझ आई? और वो जो एक कुन से सारी कायनात को हिला के रखते, उसको छोड़ के हम जाएं किसी और के पास, कैसी अकलों पे पर्दे पड़ जाते हैं। और देख लें आज ये अगर कोई भी कुछ कर सकता होता तो जिन के ऊपर भी अल्लाह ने जमीन को उलट दिया कोई उनको बचा सका, जिन के ऊपर सुनामियां आई हैं कोई उनको बचा सका, किसी के ऊपर मौत आती है कोई उसको बचा सकता है? तो अगर रहमान नुकसान देना चाहे किसी की सिफारिश नहीं काम आएगी। और हमारे हाल ये हैं, हमारे शिर्क की हालत ये है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, के एक शेर मशहूर हमारे अंदर है, खुदा जो पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। सुभान अल्लाह है, ऐसी अकलों के ऊपर के देखो कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने उनकी बात को कोट किया, वला युनकिदून, नहीं वो बचा सकेंगे मुझको, कोई भी नहीं बचा सकता, पैगंबर ही क्यों ना हो, ये कहते हैं कि वो बचा सकते हैं। अगर अल्लाह ने पकड़ भी लिया कि कोई बात नहीं वो बचा लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर अल्लाह की भी नहीं चलनी, नऊज़ु बिल्ला। तो शिर्क तो ऐसे क्रीपिन कर गया मुसलमानों में भी, आज तो पहले शिर्क हमारे अंदर से निकालने की जरूरत है। कितना एतमाद है ये हमें कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान देना चाहे कोई भी नहीं मुझे बचा सकता, फिर मुझे किससे सबसे ज्यादा डरना चाहिए? काफरों से, गैर मुस्लिमों से, ये ऐसे ना कर दे वो ऐसे, आधे से ज्यादा हमने अमल किस लिए छोड़ा हुआ? क्यों नहीं हम यहां पे रहते हुए अमल करते? वो ऐसे कर देंगे, वो ये कर देगा, फलाना वो कर देगा, ऐसा हो जाएगा। ये बताओ अगर तुम्हारा ईमान है अल्लाह के ऊपर, तो ये बताओ कि इन युरिदने रहमानु बिरुद्दुने ला तुगनी अन्नी शफातुहुम शय वला युनकिदून, ये इस आयत पे ईमान नहीं है? अगर रहमान ने तकलीफ देने का इरादा कर दिया कोई छुड़ा नहीं सकता, फिर क्या करोगे, फिर किधर भागोगे? तुम इस चीज से डरते हो कि ये तुम्हें कुछ कह देंगे? वो तो खुद फकीर है, वो तो खुद मोहताज है। इस डर की वजह से हम अपना ईमान नहीं डिक्लेयर करते। तो उसके सामने किसी की हस्ती कुछ नहीं है, वो अगर पकड़ ले, मगर उसके डर से ज्यादा, उसके खौफ से ज्यादा, उसकी पकड़ से हमें ज्यादा डरना चाहिए। हम इनकी पकड़ से डरते हैं जो हमारे जैसे इंसान है। और देखें, फिर मैं अगेन यही कहूंगी कि सुभान अल्लाह, उस मर्द मोमिन का जो मजमे में बोलना है, आप खुद सोचें हमारे सामने कितने लोग शिरक करते हैं। आप जो हमारे यहाँ ये आस्ताने मिजारें कितने खुले हुए हैं, इनमें कितने लोग शिरक कर रहे होते हैं। कभी हमारी जरूरत होती है कि हम अपने मुसलमानों में भी जाकर तबलीग कर सकें? इस तरह से मजमा तो छोड़े, एक गैदरिंग ही हो, एक पार्टी हो ना, उसके अंदर चार छह औरतें बैठी हुई हैं जिन जो आपको लग रहा है कि बड़ी मॉड स्क्वाड ये वो है, ये तो कोई दीन की बात नहीं सुनेगी, कितनी आपकी जरूरत होती कि उनके सामने अल्लाह का जिक्र कर ले? होती है जरूरत? अपने मुसलमान है वो, और यहां पे देखें वो किस तरह उनके सामने जो जान के दुश्मन बने हुए हैं, जो काफिर है, उनके सामने, मुशरिकीन के सामने कैसे बरमला तबलीग कर रहे हैं। ये होता है ईमान। कहते हैं इन्नी इदल लफी दलाल मुबीन, बेशक मैं तो तब खुली गुमराही में होऊंगा अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इनसे उम्मीदें लगा लूं और मैं उनसे डरना शुरू हो जाऊं और मैं अपना नफा नुकसान उनके हाल में हाथ में समझूं और मैं इनको इलाह बना लूं जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं तो बड़ी गुमराही में हुआ। इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्माउन, मैं तो ईमान ले आया उस रब पे, तुम्हारे रब पे। अब ये क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे रब पे ईमान ले आया। अब वो तो मानते ही नहीं है, फिर इन्होंने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे रब पे ईमान ले आया? बात यह है कि कोई माने या ना माने, सबका रब वही है। अब बच्चे कभी कभी मुझे कहते हैं मामा उनके उनके गॉड का नाम ये है। मैं कहते हैं बेटा ये ना कहो कि उनके गॉड का नाम ये है, क्योंकि सबका गॉड तो अल्लाह ही है। ये कह दो कि वो उन्होंने जिसको गॉड समझा हुआ है, जिसको गॉड बनाया हुआ है। कोई मसलन कह दे ये मेरी मां नहीं है जिसने उसको पैदा किया, तो उससे क्या उसकी मां बदल जाएगी? कोई कहे नहीं ये नहीं है मेरी मां, वो है। अब उसके कहने से तो मां नहीं बदलती, इसी तरह हमारे कहने से खुदा नहीं बदल जाएगा। रब उनका भी वही है और हमारा भी वही, ये अलग बात है कोई माने या ना माने। आप देखें ये कितनी बड़ी जुर्रत है, इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब पे ईमान ले आया। इसलिए कहा तुम्हारे रब पे कि अगर कोई कहे ना मैं अपने रब पे ईमान ले आया, फसमाऊ नहीं, तुम भी मेरी बात सुनो, तो यानी तुम भी ईमान ले आओ। कोई भी नहीं लाया, कोई किसी के खुदा पे नहीं लाता ईमान। कहा तुम्हारे रब पे मैं ईमान ले आया, तो यानी वो तुम्हारा रब है। अपने रब पे तो सभी ईमान लाते हैं, दूसरे का रब क्या, वो कोई कह दे अगर मेरे रब पे तुम ईमान लाओ तो वो मुश्किल होगा। तुम अपने ही रब पे ही ईमान ले आओ, ये आसान है। और कान खोल के सुना दिया, मैं तो ईमान ले आया हूं, मैं तो तस्दीक करता हूं, मैं तो उस रब को सच्चा मानता हूं, सुन लो मैं ईमान ले आया, अच्छी तरह सुन लो, फस माऊ नहीं, बस तुम सुन लो मेरी। और ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान दो टोक अल्फाज में अपने ईमान का इजहार करते, और अब वही जरूरत थी कि अपने ईमान का इजहार कर दिया जाए। कितनी नाजुक सिचुएशन है, सोचे कि लोग खड़े में और किसी के अंदर जुर्रत ईमानी होगी कि वो ये बात कह दे, अपने ईमान का इस तरह इजहार करे, वो जो तुम्हारा रब है मैंने उसको मान लिया। अब ये देख लें कि रजुले मोमिन की बात में कितना इत्मीनान है, क्योंकि देखिए जिसके अंदर ईमान के इजहार की जुर्रत है ना, वो ये ऐसे नहीं आ सकते किसी डरपोक बंदे में। हम तो छोटी छोटी बातों से डर जाते ना, हाँ, किसी के सामने अपने बोल के तो क्या करना। हम तो कहते हैं कि किसी को पता ही ना चल जाए कि हम मुसलमान हैं, ये भी ना पता चले हमारे किसी अमल से, हाल हुलिये से भी ना पता चल जाए, कहीं किसी को गुमान तक ना हो जाए कि मैं मुसलमान हूं, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। या मेरा नाम मुसलमानों वाला है, अब तो लोग ये भी ऐसा कुछ नाम रखने लगे हैं जो दरमियाना सा हो, पता ही ना चले क्या है। लेकिन इन्होंने तो कोई परवाह नहीं की। बरमला कहा कि मैं ईमान ले आया, सारी पब्लिक एक तरफ है और ये अकेले एक तरफ है। अमूमन तो ये होता है कि जिस तरफ सारे होते हैं ना, लोग भी उसी तरफ चले जाते हैं। और यहां पे ही इस रजुले मोमिन का ईमान और यकीन कैसा है कि इसको कोई परवाह नहीं किसी की मुखालफत की। मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, मैं लोगों को कैसे बताऊं, मैं क्या करूं, फिर उसके बाद मेरा अंजाम क्या होगा। हमने तो किसी को क्या बताना होगा, हम तो दावत किसी को देनी तो दूर की बात है, हम तो अपने ईमान को भी डिक्लेयर नहीं कर पाते। और ये इंतहाई जुर्रत की बात है। और जब खास तौर पे अक्सरियत एक तरफ हो ना, तो इंसान ज्यादातर ये कहता है अच्छा अगर ये बात सही होती तो भला इतने सारे लोग इस तरफ होते, अगर ये बात गलत होती तो इतने सारे लोग भला इस तरफ होते, तो जरूर इस बात में कोई वजन ही होगा, जरूर ये बात ठीक होगी। हम जज किस तरह से करते हैं, जब हमने देखना होता है कोई बात सही है या गलत है तो क्या करते हैं, ये देखते हैं इसके साथ फॉलोइंग कितनी है, इसके पीछे कितने लोग हैं, या देखते हैं इसके पीछे अच्छा वाकई बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो फिर सही होगी ना इसकी बात, इतने लोग तो पागल नहीं हो सकते ना, इतने लोग तो गलत बात नहीं करेंगे ना, ये हमारी तसव्वुरात है, इससे हम हक को जांचते हैं। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उनको तो कोई शक ही नहीं है। हमें तो ये डर हो कि लोग नाराज ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैंने ये बात कह दी, इतने ही खौफजदा रहते हैं इजहार करने में, ईमान के इजहार में। लेकिन याद रखें, एक दिल में दो खौफ नहीं आ सकते, या तो अल्लाह का खौफ होगा या गैर अल्लाह का होगा, क्योंकि जब अल्लाह का खौफ दिल में होता है ना, तो गैर अल्लाह का खौफ निकल जाता है दिल से। गैर अल्लाह का खौफ अगर आपके दिल में है तो इसका मतलब अल्लाह का खौफ नहीं है। हमें तो यही डर रहता है ना कि लोग हमें अप्रूव भी करेंगे या नहीं, लोगों का अप्रूवल चाहिए हर काम के लिए, मुझे कैसा देखेंगे वो, मैं ये बात कहूंगी तो क्या बोलेंगे वो, अच्छा ये ऐसी है, ये अपने ईमान को डिक्लेयर करती है। और जब तक इंसान को ये यकीन नहीं ना हो जाता कि गैर अल्लाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये यकीन करना जरूरी है, मुझे कुछ नहीं कर सकते ये, तो इतने सारे लोगों के सामने, इतनी पब्लिक के सामने, इतनी अक्सरियत के सामने कैसे खूबसूरती से सिंपली इन्नी आमंतु बी रब्बिकुम कह के अपने ईमान को बता दिया सबके सामने। ये कॉन्फिडेंस है जो हमारे अंदर होना चाहिए। कि जो भाई मैं तो ईमान ले आई, अब जो करना है कर लो, ठीक है क्या कर लो क्या, वो तो एक थे और दूसरी तरफ बहुत सारे थे, एक होके भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जरा आप मुतजलजल नहीं देखते, जरा शक में नहीं पड़े, जरा परवाह नहीं की पब्लिक की, ना सिर्फ अपने ईमान का इजहार किया, उनको भी दावत दी। और हमारे साथ अगर कभी छोटा मोटा वाकया भी हो जाए कि ईमान के इजहार में या दीन के रास्ते में कोई अमल करते हुए कोई सताया जाए, कोई तकलीफ पहुंचे, हमारा क्या हाल हो जाता है। अगली दफा तो हमने कभी किसी को पता ही ना चले कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि देखो इससे कितनी मुझे प्रॉब्लम हुई ना। अगर हालांकि ऐसा कुछ वाकया होता है तो इंसान को गम नहीं करना चाहिए, ये तो पैगंबरों की सुन्नत रही है, ये तो उनका तरीका रहा है। और इसकी अल्लाह कदरदानी कैसे करते हैं, ये हमें फिर पता चलता है आगे जो वाकया इसमें आगे कंटिन्यूएशन आती है उसमें। यहां पे नहीं बताया गया कि फिर इनके साथ क्या हुआ, हमें ये अहादीस में पता चलता है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये बुजुर्ग कभी इतना ही कहने पाए थे कि वो जो जितनी पब्लिक खड़ी थी ना, जितने लोग खड़े हुए थे, पल पड़े इनके ऊपर और जदोकोब करने लगे, कोई उनको बचाने वाला नहीं था, पत्थर मारते मारते इनको शहीद कर दिया। और ये अल्लाह के बंदे ऐसे थे कि पत्थर खा रहे थे लेकिन जुबान से क्या जारी था, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं है, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। यही बात की थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस वक्त काफिर उहद के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर के खड़े हो गए थे, उस वक्त वो टाइम था कि मुसलमान भाग रहे थे बेतरह, जिस तरफ जिसका मुंह था उस वक्त भागे जा रहे थे, उनके पांव उखड़ चुके थे, थोड़े से लोग रह गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए फिर दुश्मन आ गए और उन्होंने आपकी तरफ इतने तीरों की बारिश शुरू कर दी। उस वक्त आपने बुलंद आवाज से फरमाया था, कौन है जो मेरे लिए अपनी जान को बेच दे और जन्नत में मेरा साथ ले ले। उस वक्त सहाबा की बड़ी तादाद आपकी तरफ दौड़ पड़ी, आपको घेरे में ले लिया। इस तरह दुश्मन आपके ऊपर तलवार से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। अलबत्ता उन्होंने आपकी तरफ कई पत्थर फेंके जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक शदीद जख्मी हो गया, खून बहने लगा। उस वक्त आपकी जुबान से अल्फाज निकले, ऐ मेरे रब मेरी कौम को बख्श दे, क्योंकि ये जानते नहीं है, इनको नहीं पता। तो बिल्कुल वही हाल इस रजुल मोमिन का भी हुआ कि एक जगह पे आता है कि इन कुफार ने इनको इतना मारा कि इनको गिरा के इनके पेट पे चढ़ गए और पैरों से रोंदने लगे, यहां तक कि इनकी आंतें इनके पीछे के रास्ते से बाहर निकल आई। तो उसी वक्त अल्लाह की तरफ से देखो कैसी खुशखबरी आई, इधर इधर जान निकली है, उधर कहा गया कील अदखुलिल जन्ना, कहा गया दाखिल हो जाओ जन्नत में, यानी इधर जान निकली उधर अल्लाह ने वेलकम कर दिया, इधर वो पैरों से रोंद रहे हैं उधर अल्लाह ने पैरों में जन्नत को बिछा दिया, जन्नत की खुशखबरी सुना दी, जन्नत हाजिर कर दी। ऐसे लगता है कि इनके आगे जन्नत बिछा दी गई है। देखो वो जिनके लोग दुश्मन हो गए, जिनको लोग सता रहे, जिनके लिए जमीन तंग हो गई, अल्लाह ने आसमानों पे उनका कैसा इस्तकबाल किया। ये हैं वो फिर जिनके लिए वो आयात है सूरह फजर की, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमाइन्ना, ए नफ्से मुतमाइन इरजी इला रब्बी की रौदिया तम मर्दिया, चल अपने रब की तरफ, वो तुझसे राजी, तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए इनके लिए। सुभान अल्लाह। और ये एक वाक्या नहीं, इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी हजरत उरवा बिन मसूद थे जिन्होंने आपकी इस खिदमत में अर्ज किया था, जब ये मुसलमान हुए तो आके कहने लगे या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें मैं अपनी कौम में तबलीग करूं, इनको इस्लाम की दावत दूं। आपने फरमाया ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कत्ल कर दे। उन्होंने जवाब दिया या रसूलल्लाह इसका तो आप बिल्कुल ख्याल भी ना करें, उनको तो मेरे से इतनी मोहब्बत है, इतनी मेरे से अकीदत रखते, मैं सोया भी हूं तो मुझे जगाते नहीं है। आपने फरमाया अच्छा फिर जाओ, फिर जाके तुम उनको तबलीग करो। जब गए अपनी कौम में और जब उन्होंने जाके अभी कहना शुरू किया है मेरी कौम के लोगों तुम इन बुतों को छोड़ दो, ये लात उज्जा वगैरह कोई चीज नहीं है, इस्लाम कबूल करो, सलामती हासिल होगी। मेरे भाइयों ये बुत कोई भी हकीकत नहीं रखते, सारी भलाई इस्लाम में। अभी 3 दफा ये कहा था, सिर्फ इस कलमे को दोहराया था, जो एक ने एक तीर चलाया जो इनकी रग में जाके लगा, इसी वक्त शहीद हो गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची थी तो आपने फरमाया ये ऐसा ही है जैसे सूरह यासीन वाला जिसने कहा था काश कि मेरी कौम मेरी मगफिरत और इज्जत को जान लेती, इन्हीं के जैसा है ये। और इसी तरह हजरत काब अहबार उनके पास جب حبیب بن زید کا ذکر آیا تو وہ قبیلہ بنو نجار سے تھے حبیب بن زید، تو مسلمہ کذاب نے ان کو پکڑ لیا تھا. وہ مسلمہ کذاب وہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرمایا تھا، خدا کی قسم یہ حبیب بھی اسی حبیب کی طرح ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں. تو یہ حبیب بن زید جو تھے نا، جب مسلمہ کذاب نے ان کو پکڑا تھا تو ان سے کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا اچھا پھر میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، میرے بارے میں بھی گواہی دو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے کہا میں نہیں سنتا، مجھے نہیں سن رہا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں تم کیا کہتے ہو، جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ سچے رسول ہے، میں ان کو مانتا ہوں. پھر اس نے پوچھا اچھا پھر میری رسالت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، جواب دیا میں نہیں سنتا، مجھے نہیں سن رہا. پھر اس کذاب نے کہا کہ اچھا تو ان کی بات تو سن لیتا ہے، میری بات میں پوچھتا ہوں تو بہرا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ پوچھا، پھر یہی بات ہوئی، تو ان کے جواب پہ اس نے ان کا ایک عضو، جسم کا ایک عضو کٹوا دیا، ایک باڈی پارٹ کٹوا دیا. پھر پوچھتا تھا اچھا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو کہتے تھے میں نہیں سنتا، تو پھر دوسرا باڈی پارٹ کٹواتا. پھر پوچھتا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، پھر وہ کہتے میں نہیں سنتا، تو تیسرا کٹوا دیا. اس طرح جسم کا ایک ایک جوڑ کٹوایا ہے، اور اسی کے اوپر اسی حالت میں آخر تک ہوتا رہا، آخر دم تک وہ اسی طرح جواب دیتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. سبحان اللہ، یہ تاریخ اسلام تو بھری پڑی ایسی قربانیوں سے، لیکن ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ایسے جان دے دیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے، کوئی کہے ہائے بیچارہ، دیکھو لوگوں نے اس کا کیا حال کیا، دیکھو آئندہ تو کبھی ایسے نہیں بھی کرنا چاہیے، کیا حشر ہوا اس کا، کیا فائدہ اس کو ایمان کا دعویٰ کرنے کا. ہم تو بھائی باز رہے ایسے ایمان کے دعوے سے. ہم تو ذرا سی کسی کی بات سن کے نا، کسی کا پتہ چلتا ہے اس کا سکارف کھینچ لیا، وہ سارے سکارف اتار دو. تمہیں پتہ نہیں وہاں پہ ایک واقعہ ہو گیا، کسی لڑکی کا سکارف کھینچ دیا تھا، چھوڑو تم بھی، اب پتہ نہیں ہے وہاں پہ اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا تھا، تمہیں پتہ ہے ایسا ہوا تھا. ڈر جاؤ، یعنی دوسروں کو ڈراتے ہیں. وہ ہم نے پڑھا تھا نا جو وہی آیتیں یاد آتی ہیں، شیطان جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے لوگوں کو، کہ وہ ڈر جاؤ اس سے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے صرف ڈرتے ہیں. ہم ایمان والے ہیں، کیا ایمان والے نظر بھی آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایمان والے نظر بھی نہ ہو، ورنہ کہیں ڈسکریمنیشن نہ ہو جائے. دیکھ لیں جو ڈٹ گئے اللہ کے راستے میں، حق بات کہتے ہوئے ڈرے نہیں، جھجکے نہیں، تو لاکھوں کا مجمع بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے، جان لے سکتے تھے، جان لے لی، اب اور کیا. تو ان کو اس سے بہتر اللہ نے دے دیا مقام. اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا تھا، یہاں پہ اللہ کی عبادت بھی صحیح سے نہیں کر سکتے تھے، جس میں تنگیاں تھی، جس میں مشکلات تھی، جس میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل تھا، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے اسی وقت. کیا شاندار استقبال ہو رہا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیچ والی بات نہیں فرمائی کہ ان کے ساتھ یہ حشر کیا، یہ بتایا کہ انہوں نے ادھر کا انی آمنتو بربکم فاسمعون، ادھر انہوں نے ان کو شہید کیا، ادھر اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، مل گئی جنت ان کو. یہ ایک طرف دیکھیں ایمان کی بات ہے، ایمان کی ڈکلیریشن، اور اگلی آیت میں جنت میں داخلے کی بات، درمیان میں کچھ نہیں. ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو اس رجل مومن کا ایمان، اس کی دعوت، اس کا یقین، اس کی پکار اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اگلا سین سامنے کر دیا، ساری مخالفتیں ختم، وہ سارا کچھ دنیا میں رہ گیا. وہ کتنی دیر کا تھا بتائیں، وہ پین، وہ اذیت، وہ مخالفتیں کتنی دیر کی تھیں، زیادہ سے زیادہ وہ بے عزتیاں، जिसको हम बेइज्जती समझते कितनी देर की थी, और इसके बदले में हमेशा की जन्नत, हमेशा का सुख, हमेशा का चैन ये रजुले मोमिन को नसीब हुआ। दुनिया वाले लाते मार रहे हैं, ठोकरे मार रहे हैं, आसमान वाला इस्तकबाल कर रहा है, ऐलान कर रहा है आ जाओ दाखिल हो जाओ जन्नत में। बस ये सरहद क्रॉस करने की देर है, दुनिया की ये सरहद जिंदगी की क्रॉस की, जो ही आगे कदम रखा लो तुम्हारे लिए जन्नत बिछी हुई है। और क्या चाहिए किसी को, क्या ये कोई घाटे का सौदा है? और उनको देखो जरा, सुभान अल्लाह, पता है ये आयतें क्यों आई यहां पे? ये इस बात की वजह से आई जो इन्होंने ख्वाहिश की। ये इधर शहीद हुए, अल्लाह ताला ने जन्नत इनके लिए खोल दी। रब ने कैसी कदरदानी की। मैं तो कहती हूँ इन आयतों को तो, यानी अगर मैं पूरे कुरान में देखूं तो मैं, अगर पर्सनली अपने भी, आपका अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन पर्सनली अम्बिया के बाद, क्योंकि वो तो पैगंबर है ना, उनके बाद जितने लोगों का किस्सा है आम इंसानों का, उनमें मुझे सबसे ज्यादा जो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है वो ये रजुल मोमिन है, हबीब नज्जार। कैसा ईमान था, पहाड़ हिल जाए अपनी जगह से, ईमान ना हिले। उन्होंने जान दे दी ना अल्लाह के रास्ते में, तो इतनी कदर मिली कि जान भी वापस अल्लाह ने जिंदगी भी दे देनी है, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी भी दे दी, इससे बेहतर जिंदगी दे दी। अल्लाह कदर ऐसी करता है, अल्लाह ताला किसी का रखता नहीं है। अगर आप अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बान करते हैं, आपका क्या ख्याल अल्लाह रख लेगा आपका? नहीं, किसी का भी नहीं कुछ रखता, वो उससे बेहतर कॉइन्स में लौटा देता है के बदले जन्नत की जिंदगी दे दी। बताओ कौन सी बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया जन्नत में कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा कितना सा होता है, चाबुक जो होता है, कितनी जगह लेगा वो, एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है, वो जन्नत मिल गई इनको। जिसकी इज्जत दुनिया वालों ने ना की, जिसकी कदर ना की आसमानों में, उसकी कैसी इज्जत हुई। लेकिन दुनिया का असूल है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। लेकिन जब आप कुर्बान करते हैं अल्लाह के रास्ते में, कुछ भी दोगे, ये तो जान दी ना, मैं कहती हूं कि जान देना तो बड़ी बात है, आप अगर छोटी सी अपनी इज्जत की कुर्बानी भी देते हैं, कहीं किसी ने कोई बात कही, आपको कोई जलील करने वाली नजरों से देखा, किसी ने आपको कोई ऐसे नाम दे दिए, किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो याद रखें अल्लाह ताला इसके बदले में, आप नहीं जानते कि किस तरह आपकी कदरदानी करे, हम नहीं जानते। फिर देखिए उनकी सिंसेरिटी, उनकी खैर ख्वाही, قال يا ليت قومي يعلمون, इस वजह से अल्लाह ने ये आयतें उतारी हैं। उन्होंने ख्वाहिश की, या अल्लाह काश मेरी कौम को पता चल जाए। क्या पता चल जाए? बीमा गफर अली रब्बी, किस वजह से मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया, वजालनी मिनल मुकरमीन, के किस वजह से अल्लाह ने मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया, काश मेरे उन लोगों को पता चल जाए वो कितनी बड़ी खैर से महरूम है, हे काश उनको भी पता चल जाए, मुझे देखो क्या कुछ मिल गया, मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श भी दिया, मुझे इज्जत भी दे दी। ये इस वजह से नहीं वो कह रहे कि इनको भी पता चले ना, जैसे हम कहते हैं इसको जरा पता चलना चाहिए ये मुझे क्या मिल गया, इस तरह से नहीं, खैर ख्वाही में उनकी इतनी ज्यादा सिंसेरिटी है, इतनी खैर ख्वाही है कि कह रहे हैं कि काश उनको पता चल जाए कि अल्लाह ताला कैसी कदर करता है, अल्लाह ने मुझे देखो क्या क्या दे दिया, ताकि वो भी ईमान ले आए, उनको पता चल जाए किस वजह से अल्लाह ने मुझे ये सब दिया, इस ईमान की वजह से, हाय काश उनको कोई बता दे, काश उनको पता चल जाए। देखिए ये होती है सच्ची खैर ख्वाही, कि मर के भी उनकी खैर ख्वाही नहीं छोड़ी अपनी कौम की, और कौम भी कैसी, जिसने थोड़ा बहुत कुछ नहीं किया, इस तरह अजियत के साथ उनको मार डाला, उस कौम की खैर ख्वाही कर रहे हैं। हम अगर खैर ख्वाही करते भी हैं तो इसलिए नहीं कि लोग जहन्नुम से बच जाएं, इसलिए नहीं कि लोग हाय उनको उनका बुरा अंजाम ना हो जाए, हम कहते हैं इसलिए कि बड़े सवाब का काम है, इसलिए कि मुझे जन्नत मिल जाए, इसलिए कि बड़ा अजर है, मैं अजर कमा लूं। ठीक है, ये जज्बा भी अच्छा है, लेकिन इससे भी बुलंद जज्बा ये है कि लोगों को आग से बचाने के लिए कोशिश की जाए। अल्लाह की मखलूक उसका कुंबा है, ये अजाब से बच जाए, इनके लिए तड़पना, ये पैगंबरों वाली तड़प है, ये तड़प थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगी हुई थी। तो अल्लाह ताला तसल्लियां दे रहे हैं कुरान में, पैगंबर इसलिए दावत नहीं देते कि मुझे सवाब मिले, मुझे जन्नत मिल जाए, मेरे लिए सदका जारिया ये बन जाए, वो इसलिए तड़पते हैं ये बच जाए। ये नहीं जानते वो कितनी बुरी जगह, जहन्नम की आग क्या ठिकाना है, इनको नहीं पता है। ये जज्बा था जो रजुले मोमिन का है, क्योंकि अगर उसको जन्नत ही चाहिए होती तो वो तो मिल चुकी थी। अब उनको क्या फिक्र पड़ी हुई कि लोगों को पता चले ना चले, हम जैसे हों तो कहें कि अब जाएं जहन्नुम में, जहां मर्जी जलें, हमें क्या, हम तो आ गए, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा अंजाम किया अच्छा वो भी ऐसे जलें। ऐसे ही होता ना, जब हम खुद अपने आप को, सच बात बताएं, खुद अपने आप को रख के देखें, क्या वाकई जितना हमारे अंदर जज्बा किसी की किसी को दीन पे लाने का है, क्या उतना किसी को बताने का है, क्या इतना जज्बा है कि जिसके अंदर हम ये कहें कि हमें किसी चीज की भी परवाह नहीं, हमें कोई फायदे की, कोई कोई किसी तरह के भी नफे की कोई परवाह नहीं, हमें सिर्फ ये है कि ये जहन्नुम की आग से बचे। क्या इस तरह की खैर ख्वाही है हमारे अंदर? क्योंकि ये है पैगंबरों वाला जज्बा, ये है फिर के जिसको कहेंगे ना कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आने वाला। ये दुनिया की जो नौकरियां ना, इससे डिफरेंट काम है। दुनिया की नौकरियों में तो ऐसे हो सकता है, ये चल जाता है काम के जो है ना, ठीक है, इस चीज का भी लालच रखा, उसका भी रखा, हो सकता है इससे तो काम चल जाए, लेकिन जो दीन की नौकरी है, अल्लाह उसके लिए उसी को चुनता है जो ये काम बगैर किसी लालच के करे, जिसको किसी चीज की भी परवाह ना हो, जिसमें सच्ची तड़प हो। हो सकता है दूसरे लोग भूले भटके ये काम कर भी लें, लेकिन उसमें तासीर नहीं होगी। ये दुनिया का अनोखा ही काम है। जब तक आप 110% सेल्फलेस होके काम ना करें, ये अपना कुछ नहीं, दूसरे का भला सोचना, उनके लिए तड़प रख के फिर काम करना, इसमें फल नहीं लगता। और जो लोगों से ही बेजार रहे, उकताए हुए रहे, अपने हर काम को एहसान समझे कि मैंने दूसरे पे एहसान कर लिया, वो कैसे ये काम कर सकते? ये बंदा है मोमिन तो वो है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शख्स है जिसने अपनी कौम की खैर ख्वाही जीते जी भी की और मरने के बाद भी की, कि मर के भी यही कहा कि काश इनको पता चल जाए कितनी खैर ख्वाही है। अल्लाह ताला ये खैर ख्वाही दे हमें, हमारे अंदर ये तड़प हो कि वो जैसे ये कह रहे हैं कि मेरा अंजाम देख के ये मान जाए। आज ये खैर ख्वाही जो है ना, इवन दीन वालों में भी नहीं ऐसी खैर ख्वाही रही, और तो किसी को क्या कहना, दीन वालों में भी नहीं ये खैर ख्वाही। और इस तरह से तबलीग करना और इस तरह से दावत देना कि जिसके अंदर अपने ऊपर रख के बात करना, ये नहीं कि दूसरों को तुम नहीं ये करो, तुम वो नहीं करो, तुम ऐसे, तुम तो हो ही गुमराह, ये चीजें नहीं। वो कह रहे हैं लोगों को भी पता चल जाए कि मुझे क्या मिल गया, मैं नाकाम नहीं हुआ, इस जुर्रत ईमानी की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। तो यहां पे देखें, इस आयत से हमें फिर दलील भी मिलती है बरजख की जिंदगी की, कि बरजख की जिंदगी है। और ये भी पता चलता है कि जो रूहें होती हैं वो जाके, ऐसे नहीं होता कि मौत के साथ बस खत्म हो गया सारा कुछ, रूहें जिंदा हैं, रूहें अल्लाह के पास होती हैं, वो जिसको हम कहते हैं बरजखी जिंदगी। मौत क्या है? जिस्म और रूह का अलग हो जाना। और रूहें अल्लाह के हां हैं, जैसे शहीदों की रूहें, ये शहीद ही है ना, जन्नत में परिंदों की सूरत में, तो मौत जो है वो दूसरी जिंदगी में दाखले का दरवाजा है, वहां पे चले जाते हैं। और ये भी हमें कुछ पता चलता है कि जो दुनिया वालों के साथ उसका एक जज्बाती ताल्लुक रहता है, उसके एहसासात काम करते हैं, उसको होता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि काश जो मैंने पीछे छोड़े हुए हैं वो अच्छे रहें, वो नेकी पे चलें, काश वो अच्छा ही करके आए। देखिए ये ख्वाहिश कर रहे हैं ना, तो एक जज्बाती ताल्लुक है कि जो यानी इंसान को ये एहसास रहता है। और फिर ये भी हमें यहां से पता चलता है कि मरने के फौरन बाद इंसान को अपना अंजाम पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है कि जन्नत है कि जहन्नुम है, उसको पता चल जाता है जजा या सजा मिलना शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं कि देखो अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, और देखें ये बख्शिश किस बिना पे उन्होंने ये कही कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। कि देखें अब हम तो नहीं जानते, इनकी पिछली जिंदगी का तो यहां पे नहीं मेंशन किया गया, क्या पता कितनी इनकी जिंदगी गुजरी हो बगैर ईमान के। ईमान तो बाद में लेकर आए ना, जब रसूल आए तो ईमान लाए, तो पता नहीं कितनी जिंदगी गुजरी हो, उसमें क्या क्या हुआ हो, कोई खताएं हुई हो, कोई कुछ हुआ। ये रसूल तो नहीं है, ये पैगंबर तो नहीं है, मगर देखो यहां पे ये कह रहे हैं कि मेरे रब ने मेरी मगफिरत कर दी, मेरी खताओं को माफ कर दिया। देखो रब ने कैसी कदरदानी की ना, सारा हिसाब किताब साफ हो गया, सारी खताएं माफ हो गई, मिट गई, कोताहियों को अल्लाह ताला ने बिठा दिया, मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया, जिसको बख्शिश मिल गई और जिसको जाते ही जन्नत की खुशखबरी मिल गई, फिर बताओ उसको और क्या चाहिए। और यहां पे उलमा ये कहते हैं कि जितनी तड़प इनके अंदर थी उसी की वजह से अल्लाह ताला ने फिर ये आयात उतार दी कुरान में, क्योंकि इन्होंने ये ख्वाहिश की थी ना अल्लाह काश लोगों को पता चल जाए, तो अल्लाह ताला ने ये आयात उतार दी। देखिए आज हमें पता चल गया कि उन्होंने ये ख्वाहिश की थी, वरना थोड़ी कोई आके बताएगा, हमें क्या पता उस जिंदगी में कौन क्या ख्वाहिश कर रहा है, क्योंकि वो तो जा चुके हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। अल्लाह ने इस पे कुरान उतारा ताकि रहती दुनिया तक लोग ये आयतें पढ़ें, लोग इनके इखलास को जानें, इनके जज्बा ईमानी को देख के अपने ईमानों को ताजा करें, ताकि लोगों को पता चल जाए जो ईमानी जुर्रत करता है, जो इस इखलास से काम करता है, अल्लाह उसके काम को कैसे जिंदा रखता है। आप देख लें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काम में जब इखलास था ना, तो अल्लाह ने उनके पैरों के कदमों को भी महफूज कर दिया। आज आप जाते हैं वहां पे तो मकाम इब्राहिम पे आप देखते हैं उनके कदमों के निशान, अल्लाह ने उनके कदमों के निशानों को मिटाया नहीं, महफूज किया, इखलास था ना। आप देखें बीबी हाजरा में एक दौड़ी थी ना, दौड़ी थी लेकिन इखलास था, तो अल्लाह ने सब को दौड़ा दिया उनके पैरों के निशानों पर। तो देख लें जब इंसान इखलास के साथ काम करता है, अल्लाह उसके काम को महफूज कर देता है, इस तरह कुरान में महफूज हो गया और अल्लाह ने इससे बेहतर जिंदगी दे दी। तो ये जो लोग वैसे भी दीन की तरफ आते हैं, लोग कहते हैं पता नहीं दीन की तरफ आए तो हमारा क्या कुछ ना छिन जाए, दीन आपसे कुछ लेता थोड़ी है, ये तो जिंदगी को भी खुशियों से भर देता है, हम क्यों उससे पीछे हटते हैं, तुम आओगे तो सब कुछ मिलेगा, ईमान का तो मजा ही बहुत है। और ये तो दुनिया में इसकी लज्जत है, फिर जो आखरत में है इसकी लज्जत वो इससे कहीं ज्यादा है, जो इसकी वजह से सुकून, जो इत्मीनान, जो ठहराव ये आता है जिंदगी में, वो इसके बगैर नहीं आता। तो उन्होंने ऐसी ख्वाहिश की लोगों को पता चल जाए। हम तो सोचें तो शायद हम ये कहें कि अगर ऐसा कुछ हो, किसी की वजह से हमें तकलीफ हो, क्या हमारी कभी ख्वाहिश होगी कि हाय काश उसकी भी बख्शिश हो जाए, उसको भी पता चल जाए अल्लाह ने मुझे इस वजह से बख्श दिया, जन्नत दे दी, ऐसी खैर ख्वाही क्या हमारे अंदर है। हम तो अगर जरा सा भी दो चार कोई अमल कर लेते ना, हमें लगता है कि दुनिया के सारे लोग इतने गुनाहगार हैं, और हम ही पता नहीं कितनी बड़ी पहुंची हुई चीजें हैं। हमारा अपना क्या मकाम है अल्लाह की नजर में, हमें तो पता भी नहीं है। और वो जन्नत पा के भी देखें, ऐसी कोई बात नहीं करे कि उनको बद्दुआएं दें, उनको कुछ कहें, अल्लाह के पास रोने रोए, अल्लाह इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया, ऐसा सलूक किया, मैं तो आपको शिकायत करता हूं कि इन्होंने ये किया, अब इनके साथ भी ना कभी भलाई हो। वो तो कहते हैं काश वो भी यहाँ पे आने के काबिल हो जाए, यहाँ पे मुझे जो मुझे जगह मिली अल्लाह उनकी भी मगफिरत हो जाए, उनको पता तो चल जाए। हम जिंदा रह के भी ये बात नहीं समझ सके, और वो मर के भी खैरख्वाही नहीं छोड़ रहे, मर के भी कह रहे हैं काश उनको मेरी मौत से ही सबक मिल जाए। और ये सुना के कुफारे मक्का को भी अल्लाह ताला ने बताया कि जो तुम इन नबी के साथ कर रहे हो, इनके साथियों के साथ कर रहे हो, ये तो तुम्हारे सच्चे खैर ख्वाह हैं, इस रजुले मोमिन की तरह तुमसे कुछ नहीं चाहते, ये तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तो देख लो उसकी तो खैर ख्वाही इतनी ज्यादा थी, लोगों ने उससे जिंदगी छीन ली, खैर ख्वाही ना छीन सके। जो बंदा है मोमिन होता है, रजुले मोमिन होता है, जो वाकई दाई लल्ला होता है, सच्चा अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, उसके अंदर ऐसी ही तड़प होती है। सुभान अल्लाह, सारी तकलीफें खत्म हो गई, सारी मुश्किलें खत्म हो गई, एक जंप लगाई, ऐसे लग नहीं रहा। इस आयत से अगली आयत में देखें, एक लीप होती है ना, लीप, एक छलांग लगाई, एक फलांग लगाई, दुनिया से जन्नत में पहुंच गए, एक जंप ही तो लग रही है ये। सारी दुनिया की तकलीफें पीछे रह गई, सारी मुसीबतें पीछे रह गई, कितने नफे का सौदा कर लिया। वाकई अगर इंसान सोचे तो दीन के रास्ते में अगर हमें कोई तकलीफ आती है, तो कभी ये सोचते हैं कितने दिन की है ये तकलीफ, कितने दिन की मुश्किल है, कितने दिन की परेशानी है, आखिर तो इस जिंदगी ने खत्म हो ही जाना है, फिर हमेशा की जन्नत है, वहां पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वहां पे तो कोई परेशानी नहीं है, एक दफा वहां पहुंच जाऊं सब अच्छा है। फिर कि हमसे ये 4 दिन की भी मुश्किल नहीं काटी जाती, 4 दिन की परेशानी से हम घबरा जाते हैं, तंगी महसूस होने लगती है। यहां पे अगर 4 दिन की तंगी बर्दाश्त कर लेंगे, हमेशा की वहां पे आसानियां, जहां पे ना कोई ताना है, ना कोई लघवात है, हर चीज मर्जी के मुताबिक है, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई पीयर प्रेशर। लेकिन देखो ये 4 दिन की तंगी हमारे लिए पहाड़ की तरह हो जाती है, और ये कोई पैगंबर नहीं है, ये एक आम इंसान है। इसीलिए इनकी लाइफ से हमें कितना कुछ सीखने का मौका मिलता है, कि हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हम ये नहीं कह सकते इनके पास तो कोई वही आती थी ना, इनके पास तो फरिश्ता, कुछ भी नहीं, एक आम इंसान है। एक आम इंसान में भी क्या इतनी तड़प हो सकती है? इनके ऊपर तो अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी आयद नहीं करती थी कि आपने जरूरी लोगों को बताना है। लेकिन वही वाली बात है कि जब दिल के अंदर अल्लाह पर ईमान आ जाता है ना, तो इंसान चैन से नहीं बैठ सकता। कैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकल गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके जब काबा में गए थे और जाके तबलीग की थी, दावत दी थी लोगों को, लोगों ने मार मार के वो हाल कर दिया था कि बेहोश हो गए थे, कबीले वाले उठा के लेकर आए थे, और ऐसे लग रहा था कि अब बस जिंदा नहीं रह सकेंगे, चारपाई पे डाली में, शाम को होश आई। ये क्या बात थी उनके अंदर, क्या तड़प थी उनके अंदर। हमें तो कोई टेढ़ी आंख से ही देख ले तो हम सारा कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये तो हमारे ईमानों का हाल है, हम खुद नहीं अमल कर पाते, दूसरों को क्या कहेंगे, दूसरों को ईमान की दावत क्या देंगे, हमारा इतना ईमान कितना मुतजलजल है, हम तो खुद हर वक्त शेकी रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह के जब वलियों को कोई सताता है, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دیکھیں کہ کیا آتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کا انتقام لیا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بات جو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو سچی خیر خواہی ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی کرنی چاہیے، حتی الامکان اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، جاہلوں کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، فوراً انتقام لینا، فوراً بدعائیں کرنا، اس کی بجائے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے۔ دیکھیں وہ وہاں پہ بھی جا کے اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ حبیب نجار نے کس طرح اپنے قاتلوں کے لیے بھی جنت کی تمنا کی، یہ تمنا کی وہ بھی کسی طرح ایمان لیں، ان کی بھی مغفرت ہو جائے، وہ بھی انعام اور اکرام پا لیں۔ ہم کیوں بھول گئے ہیں یہ سب باتیں، جبکہ ہمارے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سب سے پہلے یہی چیز سکھاتی ہے۔ ہم لوگوں تک پیغام پہنچانے میں تو سست ہیں، لیکن ان کے لیے بدعائیں کرنے میں کتنے تیز ہیں۔ سچ بتائیں آپ مجھے، آپ کو ان کی ہدایت کی تمنا زیادہ ہے یا ان کی تباہی کی؟ ہم اللہ کی طرف بلانے میں زیادہ کوشش کرتے ہیں یا مرنے مارنے میں؟ ہمارے اندر خیر خواہی کتنی ہے؟ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست کرائٹیریا ہے یہ جاننے کا کہ ہمارے اندر کتنی خیر خواہی ہے، خیر خواہی زیادہ ہے یا نفرتیں زیادہ ہیں۔ آپ گاڑی میں جا بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کے غصے سے نظریں دوسری گاڑیوں کی طرف پڑتی ہیں، یہ تو کافر، اور یہ تو ایسے، اور یہ تو اللہ کرے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ کتنا پیغام پہنچایا آپ نے ان کو، کتنی تبلیغ کر چکے ہیں۔ تو نفرتوں سے دین نہیں پھیلا کرتے، تو کہتے ہیں اللہ میری قوم کو، یہ تو کہتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے، مرتے مرتے بھی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے پھر وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، پھر نہیں نازل کیا ہم نے اس قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے۔ اس کے بعد دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ضرورت کہ اپنے باغیوں کو کچلنے کے لیے ان کے لیے کوئی لاؤ لشکر تیار کیا جائے، کوئی فوج تیار کی جائے، کوئی ہتھیار تیار کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی بھی نہیں ضرورت۔ اس نے تو کن کہنا تو ہو جانا، اس کو تو ذرا بھی نہیں زور لگانے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے پھر، کیونکہ یہ اللہ کے دوست کو تکلیف دینے والے، اور آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے جو ولی ہیں ان کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھ لیں جو اللہ کے دوست کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کوئی ضرورت نہیں ہے پڑی اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی لشکر بھیجے، یہ کون سے اتنی بڑی چیز تھی تو ان کو کوئی مارنے کے لیے کوئی لشکر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کی طاقت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کانت اللہ صحت واحدہ، ایک چیخ ہی تھی، کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے دروازوں کو پکڑ کے ایک چیخ ماری تھی بس، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ بجھ گئے سارے کے سارے، ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے آپ کو کہا نا آگ کا بجھنا، چنگاریوں کا ٹھنڈا ہونا، یہ مطلب ہے خامد کا، بڑا زبردست لفظ آیا یہاں پہ۔ دیکھو اللہ نے ان کو کیسا ٹھنڈا کر دیا، جو بہت بھڑک رہے تھے، بہت اچھل رہے تھے، بہت ابل رہے تھے نا، کیسے ٹھنڈا کر دیا۔ ٹھنڈا کرنے کا ایک یہ مطلب بھی ہوتا ہے نا کہ لائف ختم ہو گئی، وہ جو چہل پہل تھی، وہ جو بڑے وہ تھے، انہوں نے کیا سوچا تھا کہ ان کو مار کے ہماری خلاصی ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ نے تو ایک آواز سے ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ ابھی بھی کہتے ہیں نا، سائنس کہتی 170 ڈیسیبل سے اوپر کی آواز سے انسان مر جاتا ہے، تو رب کے سامنے انسان کیسے اکڑتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں سنتا، میں نہیں یہ کرتا؟ انسان کا حال تو دیکھیں، اس کی اوقات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی ایک آواز کو تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک لیول سے اوپر اللہ تعالیٰ ساؤنڈ والیوم ہی کر دینا، انسان مر جاتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی اس کو کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتا۔ تو کون کہنا تو ختم۔ तो क्या समझता है इंसान अपने आप को, उसने को फौजें नहीं भेजनी, उसके को लश्कर नहीं उतरने के वो फरिश्तों को भेजे एक एक को मारे, नहीं कुछ भी नहीं। ये है इंसान की औकात, इंसान अपनी औकात तो पहचाने। फ़ाइज़ा से पता चलता है पास अचानक उसी वक्त उनका यह हाल हो गया, बुझ गए सारे के सारे खत्म, जैसे शोला है ना फड़फड़ा रहा होता है, एक हवा चलती है आंधी का एक झोंका आता है और वो खत्म। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।